आगे सबक देखिए भाई। قال وإن تزوج حبلا من زينا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى النكاح فاسد وإن كان الحمل ثابتا نسب فالنكاح باطل بالإجماع। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि बांदी से निकाह जायज है, चाहे मुसलमान बांदी हो चाहे अहले किताब बांदी हो, जबकि इमाम शाफ़ई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि सिर्फ मुसलमान बांदी से निकाह जायज है और अहले किताब बांदी से निकाह जायज नहीं। और नीज वो फरमाते हैं कि बांदी से निकाह सिर्फ उसी वक्त जायज है जब कोई शख्स आजाद औरत से निकाह की कुदरत न रखता हो भाई। और नीज वो फरमाते हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही बांदी को कोई शख्स अपने निकाह में रख सकता है, जबकि इंदल अहनाफ मुसलमान बांदी से भी निकाह जायज और किताबिया बांदी से भी निकाह जायज। और नीज आजाद औरत पर कुदरत हो या कुदरत ना हो, दोनों सूरत में बांदी के साथ निकाह जायज है। और नीज सिर्फ एक ही बांदी नहीं, बल्कि जैसे चार आजाद औरतों से कोई शख्स निकाह कर सकता है बैक वक्त, यानी चार आजाद औरतों को अपने निकाह में रख सकता है, इसी तरह चार बांदियों को भी अपने निकाह में रख सकता है। अलबत्ता यह है कि बांदी की औलाद जो है वो बांदी के मालिक के ममलूक होंगे, यानी गुलाम या बांदियां होंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जो है वो कुरान से आयत जिकर फरमाते हैं, वमन लम यस्ततिअ मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, कि जो शख्स तुम में से इस बात की कुदरत नहीं रखता कि वह पाकदामन मोमिना औरतों से निकाह कर ले, फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो फिर जो तुम्हारे दाहिने हाथ जिनके मालिक हैं यानी तुम्हारी जो मोमिना बांदियां हैं उनसे निकाह कर सकता है। इमाम शाफी और रहमतुल्लाह का जाबता है कि जब किसी हुक्म को किसी शर्त के साथ मुअल्लक कर दिया जाए तो वो शर्त पाई जाएगी तो वो हुक्म भी होगा, वो शर्त नहीं तो हुक्म भी नहीं। और यहां बांदी के साथ निकाह को अल्लाह ताला ने मशरूत फरमाया है कि जो तुम में से आजाद औरत की कुदरत नहीं रखता। भाई आजाद औरत का महर भी ज्यादा होगा और नीज उसका नफका भी ज्यादा देना पड़ेगा बांदी के मुकाबले में, जबकि बांदी जो है वो तो किसी के ममलू का है, तो वहां महर भी थोड़ा होगा और नीज नफका भी आजाद औरत जितना नहीं होगा, बल्कि अक्सर औकात तो नफका वो उसका आका ही दे देगा। तो लिहाजा जो गरीब है, जो साहिब इस्तेतात नहीं है, आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकता, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बांदी से निकाह कर सकते हो। तो देखो बांदी के साथ निकाह को मुअल्लक कर दिया अल्लाह ताला ने आजाद औरत की इस्तेतात न होने के साथ, लिहाजा जिसमें यह इस्तेतात होगी कि वो आजाद औरत से निकाह कर सकता है तो वो उसके लिए बांदी से निकाह जायज नहीं। और नीज वो फरमाते हैं कि मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, यहां बांदियों के साथ मुमिनात की कैद आ गई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जाबता है कि जब किसी हुक्म की तख्सीस कर दी जाए किसी वसफ के साथ तो मादा से उस हुक्म की नफी हो जाएगी। इस आयत से यह पता चला कि इस्तेतात ना हो तो मोमिना बांदी से निकाह कर लो, मालूम हुआ जो गैर मोमिना होगी यानी जो अहले किताब है उसके साथ निकाह की कोई गुंजाइश नहीं। जबकि इंदल अहनाफ, याद रखो अहनाफ का जाबता यह है कि हमारे नजदीक मफहूम मुखालिफ मुतबर नहीं है भाई, ये जाबता है और इस पर बहुत से फिर मसाइल निकलते हैं भाई। तो हम कहते हैं कि आपने इस आयत से मफहूम मुखालिफ ये लिया कि जिसमें इस्तेतात हो वो बांदी से निकाह नहीं कर सकता। और नीज यहां मोमिनात की कैद आई, आपने इससे ये माना लिया कि मालूम है जो मोमिना नहीं होगी उसके साथ निकाह भी जायज नहीं होगा, जबकि हमारे नजदीक मफहूम मुखालिफ मुतबर नहीं है। इस आयत में सिर्फ उन लोगों का जिक्र है जो इस्तेतात नहीं रखते, वो निकाह कर सकते हैं। जो इस्तेताअत रखते हैं उनके बारे में आयत खामोश है, आयत में उनका कोई जिक्र नहीं है। और हमने दीगर नुसूस के अंदर फिर गौर किया तो वहां से पता चला कि बांदी के साथ निकाह जायज है मुतलकन, भाई उसमें इस्तेताअत की कैद नहीं है। मसलन कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फनकिहु मा ताबा लकुम मिनन निसाई, कि बस तुम लोग निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। अब ये निसा का लफ्ज आजाद औरत को भी शामिल है और बांदी को भी, बांदियां भी क्या हैं, निसा हैं, औरतें हैं। इससे पता चला कि बांदियों से निकाह जायज है और इसमें कोई कैद नहीं है कि कुदरत हो तो निकाह कर सकते हो, कुदरत ना हो तो निकाह नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। और नीज कुरान में अल्लाह उन औरतों का जिक्र फरमाते हैं जिनसे निकाह हराम है और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं व उहिल्ल लकुम मा वरा अज़ालिकुम, इनके अलावा औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और उनके अलावा के अंदर जैसे आजाद औरतें आ गई उसी तरह बांदियां भी आ गई। मालूम हुआ आजाद औरतों से भी निकाह जायज है और बांदियों से भी निकाह जायज है उन मुहर्रमात के अलावा। तो ये दोनों जो है आयतें मुतलक हैं, इनमें किसी किस्म की कैद नहीं है भाई। तो हमारे नजदीक मफहूम में मुखालिफ मोतबर नहीं। और इसी तरह इमाम शाफिर हमला ने क्या जिक्र फरमाया था कि एक वसफ के साथ जब एक हुक्म की तख्सीस आ जाए तो मा अदा से यानी उसके अलावा से उस हुक्म की नफी हो जाती है। हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि जो वसफ को जिक्र किया जाता है वो एहतराज के लिए जिक्र नहीं किया जाता। बाज औकात वसफ को अवलवियत और अफजलियत बयान करने के लिए जिक्र किया जाता है। बात समझ में आ गई। यानी यह यूं कहो कि इस आयत में मोमिनात का जिक्र है और जो किताबियां हैं उनसे तो आयत खामोश है, उनका जिक्र ही नहीं। और दीगर नुसूस से पता चलता है कि किताबिया से भी निकाह जायज है। जब किताबिया औरतों से निकाह जायज है तो किताबिया बांदियां जो हैं वो भी औरतें हैं, उनके साथ भी क्या होगा, निकाह जायज होगा भाई। और नीस हम कहते हैं कि जो वसफ को जिक्र किया जाता है वो बाज औकात औलवियत और अफजलियत को बतलाने के लिए किया जाता है। यानी औला ये है कि मोमिना बांदी से निकाह करो। जैसे गुज़श्ता सबक के अंदर वो आयत आई थी वल मुहसनात मिनल लदीन उतुल किताब, के अहले किताब में से जो पाक दामन औरतें हैं। अब वहां पर मोहसनात की सिफत जिक्र हुई थी कि पाक दामन अहले किताब औरतों से निकाह कर सकते हो, हालांकि अगर बदकार अहले किताब औरत है उससे भी निकाह जायज है। तो फिर यह आयत में तो मोहसनात का जिक्र है, पाक दामन का जिक्र है, तो जवाब यह कि यह कैद इत्तेफाकी है। यानी आदतन चूंकि ऐसा होता है निकाह पाक दामन औरत से किया जाता है इसलिए इसको जिक्र फरमाया, या यहां पर पाक दामन को अवलवियत या अफजलियत बतलाने के लिए जिक्र किया गया कि औला और अफजल क्या है, कि अगर अहले किताब औरत से निकाह करना ही है तो किस किस्म की औरत से निकाह करो, पाक दामन औरत से निकाह करो। बात समझ में आ गई। और फिर नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कियास भी हमारा मुअय्यद है, कियास से भी हमारी ताईद होती है, इसलिए क्योंकि बांदी से जब निकाह करेगा तो जो औलाद पैदा होगी वो गुलाम और बांदियां होंगे, वो जो बांदी का मालिक है उसके गुलाम और बांदियां होंगे, ये जो बच्चे पैदा होंगे इस बांदी से। तो गोया बांदी के साथ निकाह के अंदर अपनी औलाद को, अपने जुज को गुलामी पर पेश करना है कि आप उनको गुलाम बना रहे हैं। लिहाजा अकल तो ये तकाजा करती है कि बांदी से निकाह सिरे से जायज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीयत ने इजाजत दे दी जरूरत की बिना पर। और जो चीज जरूरत की वजह से साबित होती है वो बकदरे जरूरत ही साबित होगी, और जरूरत एक बांदी से पूरी हो गई लिहाजा एक से जायद की भी इजाजत नहीं, और जरूरत मुसलमान बांदी से पूरी हो गई लिहाजा अहले किताब बांदी से भी निकाह जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। जबकि हम कहते हैं कि आपने कहा कि बांदी से जब कोई निकाह करता है तो वो अपने जुज को यानी अपनी औलाद को गुलामी पर पेश करता है, हम कहते हैं यूं न कहें कि अपने औलाद को गुलामी पर पेश करता है, इसलिए क्योंकि ये तो उस वक्त कहा जाएगा जब औलाद मौजूद हो। औलाद हो तो हम कहेंगे ये औलाद को क्या कर रहा है, गुलामी पर पेश कर रहा है। और यहां तो अभी औलाद ही नहीं है, उससे निकाह की बात चल रही है, औलाद ही नहीं है तो फिर उसको गुलामी पर पेश करने का क्या माना। बल्कि यूं कहो कि ये शख्स बांदी से निकाह करके आजाद बच्चे के हुसूल से अपने आप को रोक रहा है, यानी आजाद बच्चे की तहसील से रुक रहा है ये शख्स। آزاد بچے کی، یہ جب باندی سے نکاح کر رہا ہے تو آزاد بچے کی تحصیل سے رک رہا ہے، اور یہ شخص جو اصل ہے یعنی بچہ، بچے کی تحصیل سے رک سکتا ہے تو آزاد بچہ یعنی وصف کی تحصیل سے بطریق اولا رک سکتا ہے۔ بھئی دیکھو نا، بچہ ہے اصل اور آزاد یا غلام ہونا وہ ہے اس کا وصف، اور شریعت نے ہر شخص کو اجازت دی ہے، وہ چاہے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے جس سے اولاد ہی نہ ہو، یہ جائز ہے، بہتر تو نہیں لیکن جائز ہے، اس کے لیے شرعاً جائز ہے۔ تو جب ایک شخص، وہ اولاد جو اصل ہے، اصل کی تحصیل سے رکنا اس کے لیے جائز ہے، تو اس اصل کی جو وصف ہے یعنی آزادی، اس سے رکنا بطریق اولا اس کے لیے جائز ہوگا۔ باندی سے نکاح کرے گا تو اولاد تو حاصل ہو رہی ہے، البتہ صرف اس میں آزادی والا وصف نہیں ہے، تو آزادی والے وصف کے حاصل کرنے سے یہ رک گیا، تو جب اولاد کے حاصل کرنے سے یہ رک سکتا ہے تو اولاد کے وصف کے حاصل کرنے سے یہ بطریق اولا رک سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے چاہے مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شخص جو باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے عقد میں پہلے سے کوئی آزاد عورت نہ ہو۔ وجہ یہ کہ جو سوکن آتی ہے وہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ باندی لے آئیں، یہ تو اس کی اہانت کر دی، کیونکہ آزاد عورت کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، اور باندیاں اور غلام یہ تو جمادات کی طرح ہیں، بے جان چیزوں کی طرح ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، تو آزاد عورت کو تو بڑا اونچا مقام ہے۔ تو ایک تو سوکن کے آنے سے تکلیف، اور پھر اوپر سے آپ باندی اس کے اوپر لے آئیں گے، یہ تو آپ نے اس کی حد درجے گویا اہانت کر دی، اور یہ بات اس کے لیے بڑے عیب اور تانے کا باعث بنے گی، تمام عورتیں اس کو تانا دیں گی کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے اوپر تو خاوند نے باندی سے نکاح کر لیا۔ لہذا اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آزاد عورت جب نکاح میں موجود ہے، اعلی جب موجود ہے، تو ادنا کو لانے کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ باندی سے نکاح کے لیے قدرت کی شرط لگائی تھی شریعت نے، لیکن غلام کے اندر تو قدرت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلام تو ایک روپے کا بھی مالک نہیں ہوتا، وہاں قدرت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کو قدرت ہو بھائی، لہذا اس کے لیے باندی سے نکاح جائز ہے۔ اور نیز اپنے جس کو غلامی پر پیش کرنا، یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ غلام تو خود غلام ہی تو ہے، تو اولاد بھی غلام ہو تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں۔ اور نیز امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے عقد میں آزاد عورت موجود ہے تو یہ غلام پھر بھی باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث میں آیا ہے لا تنکح الامت علی الحرتی، کہ آزاد عورت کے اوپر باندی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ حدیث مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں کہ یہ پابندی آزاد آدمی کے لیے ہے اور غلام کے لیے نہیں ہے، لہذا یہ سب کے لیے یہ پابندی ہوگی بھائی۔ اور نیز امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزاد عورت کے اوپر باندی سے نکاح کو منع کیا گیا ہے، یہ اس آزاد عورت کے حق کی وجہ سے ہے، تو اگر وہ خود اجازت دے دے پھر باندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث مطلق ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آزاد عورت اجازت دے دے تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور نیز قیاس بھی ہماری تائید کرتا ہے، اس لیے کیونکہ غلامی کی وجہ سے احکام شریعت میں تنصیف ہو جاتی ہے، احکام شریعت نصف ہو جاتے ہیں، تو جیسے سزائیں ہیں وہ بھی غلام کے لیے نصف ہو جاتی ہیں، اور یہ محل نکاح ہونا باندی کا یہ اس کے لیے انعام ہے، نعمت ہے، تو نعمتوں کے اندر بھی تنصیف جاری ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی، نعمتوں میں بھی کیا ہو جائے گی؟ تنصیف ہو جائے گی، نصف ہو جائے گی۔ دیکھو یہ باندی جو ہے اس کو شریعت نے محل نکاح بنا دیا کہ یہ نکاح کا محل ہے، اس سے بھی تم لوگ نکاح کر سکتے ہو، تو باندی کا محل نکاح ہونا یہ اس کے اوپر شریعت کا انعام ہے۔ اگر شریعت اجازت ہی نہ دیتی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی، تو یہ شریعت نے اس پر انعام کیا کہ اس کو محل نکاح بنایا۔ اور آزاد عورت، اس پر بھی شریعت کا انعام کہ اس کو اللہ نے محل نکاح بنایا ہے، لیکن آزاد عورت تمام احوال میں محل نکاح ہے، یعنی حالت انفراد میں بھی اور حالت اجتماع میں بھی۔ انفراد جب اکیلی ہو، یعنی خاوند اس سے نکاح کر رہا ہے، پہلے سے کوئی عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے، آزاد عورت، और फिर हालत इज्तिमा में अगर एक आजाद औरत पहले से निकाह में है और फिर दूसरी आजाद औरत से खावन निकाह करना चाहता है, तो इस सूरत में भी ये महल्ले निकाह है, इसे निकाह कर सकता है। तो आजाद औरत महल्ले निकाह है हालत इनफिराद में भी और हालत इज्तिमा कह लें या हालत इंजिमाम कह लें, तो दोनों में तो बांदी के अंदर तंसीफ हो जाएगी। वो हालत इनफिराद में तो महल्ले निकाह रहेगी और हालत इज्तिमा में वो महल्ले निकाह नहीं, यानी आजाद औरत पहले से निकाह में मौजूद है तो इसके ऊपर बांदी को नहीं ला सकता, वो महल्ले निकाह ही नहीं है इस वक्त। या आजाद औरत और बांदी से इकट्ठे निकाह कर रहा है, ये भी हालत इंजिमाम के अंदर ही आ जाएगा। एक ही अकद कर रहा है, ईजाब और कबूल एक है और दोनों के साथ अकद कर रहा है कि फला और फला जो है औरतें वो हमने आपके अकद में दे दी और ये कहता है मैंने कबूल किया। अब देखो इकट्ठा दोनों से निकाह कर रहा है तो भी ये भी हालत इज्तिमा ही है, बांदी को आजाद के साथ मिला रहा है, लिहाजा इस सूरत में भी बांदी के साथ निकाह नहीं हो सकता भाई। और जबकि इसका बरअक्स जायज है, यानी एक शख्स के निकाह में बांदी मौजूद है अब वो आजाद औरत से निकाह करना चाहता है तो जायज है भाई। और फिर ये भी बतलाया साहिब हिदाया ने कि एक शख्स जो है उसके आकद में आजाद औरत थी, अब वो बांदी से निकाह करना चाहता है तो उस बांदी के साथ तो निकाह जायज नहीं, तो इसने इस आजाद औरत को तलाक दे दी। अब इद्दत के अंदर तलाक बाइन दे दी, अब ये इद्दत के अंदर इस बांदी से निकाह करना चाहता है, इमाम साहब फरमाते नहीं इद्दत के अंदर भी इसकी इजाजत नहीं, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इद्दत के अंदर निकाह कर सकता है, इसलिए क्योंकि जब बांदी से निकाह करेगा तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि यह आजाद पर बांदी के साथ निकाह कर रहा है, और आजाद पर बांदी से निकाह करना यही तो हराम करने वाला था इस आकद को, और वो चीज यहां पर मौजूद नहीं है। और नहीं साहिबैन इसको कयास करते हैं कसम वाले मामले पर कि कोई शख्स अगर ये कसम उठा ले अपनी बीवी से कहे कि वल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर किसी और औरत से निकाह नहीं करूंगा, तो ये शख्स अगर तलाक बाइन दे देता है अपनी इस बीवी को तो आकद के अंदर भी निकाह कर ले तो ये शख्स हानिस नहीं, क्योंकि ये उस आजाद औरत के ऊपर निकाह नहीं कहा जाता इसको। और इमाम साहब भी इस मसले में फरमाते हैं कि वो शख्स हानिस नहीं होगा, तो कहते हैं इससे भी हमारे मजहब की ताइद होती है। तो उसका फिर जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि भाई ये जो इद्दत के अंदर निकाह बाज एतबारात से बाकी होता है, तो एहतियात का तकाजा यह है कि आजाद औरत की इद्दत के दौरान भी बांदी से निकाह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जो कसम वाला मसला है, कहते हैं कसम वाले मसले में कसम खाने वाले का मकसद यह था तुम्हारा जो हिस्सा है इसमें मैं किसी और औरत को दाखिल नहीं करूंगा, और जब तलाक दे चुका है तलाक बाइन तो अब तो औरत का हिस्सा ही ना रहा, तो उसके हिस्से पर दूसरी औरत को दाखिल करना भी ना पाया गया। और नीज मैंने बताया था कि ये जो कसम है इसके अंदर दारोमदार उर्फ पर होता है, उर्फ में जो एक बात का माना समझा जाए कसम के अंदर भी उसी माना को देखा जाएगा। तो इस शख्स ने क्या कहा था, वल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर किसी से निकाह नहीं करूंगा, तो यहां जब कोई तलाके बाइन दे दे और फिर दूसरी औरत से निकाह करे तो उर्फ के अंदर यानी आम लोगों में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसने उस पहली बीवी पर दूसरा निकाह कर लिया, क्योंकि पहली को तो ये तलाक दे चुका है भाई। और नीस फिर ये भी बताया कि आजाद आदमी के लिए चार निकाह जायज हैं एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो चारों आजाद औरतें हों या चारों बांदियां हों या कुछ आजाद हों और कुछ बांदियां हों, मसलन पहले बांदी से निकाह किया था उसके ऊपर आजाद औरतों से निकाह कर लिया, तो इस तमाम सूरतें जायज हैं। जबकि गुलाम जो है हमारे नजदीक ज्यादा से ज्यादा दो निकाह कर सकता है, क्योंकि वो गुलाम है और गुलामी की वजह से इनामात में तंसीफ आती है तो वो दो निकाह कर सकता है। जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम जो है इसको जो निकाह की इजाजत दी गई है ये आदमी होने की हैसियत से दी गई है कि ये भी आदमी है ये भी इंसान है, जैसे आका इंसान है तो गुलाम भी इंसान है, तो जैसे आका को चार निकाह की इजाजत गुलाम को भी चार निकाह की इजाजत होगी। और नीज वो कहते हैं कि गुलाम जो है उसको ये जो इजाजत दी गई है निकाह की, ये आदमी और इंसान होने की हैसियत से है, लिहाजा आका से इजाजत की भी नहीं जरूरत। जबकि इंद अल अहनाफ गुलाम आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता, और ज्यादा से ज्यादा दो निकाह कर सकता है, और जबकि आजाद जो है वो चार निकाह कर सकता है, ताकि आजादी का जो शरफ है, आजादी का जो एजाज है, उसका इजहार हो जाए। और फिर यह भी बतलाया था साहिब हिदाया ने कि अगर एक शख्स के निकाह में चार औरतें हैं और उनमें से वो एक को तलाक दे देता है, तो फिर अब उसके बाद वो पांचवीं से निकाह नहीं कर सकता जब तक इस औरत की इद्दत पूरी ना हो जाए। इसलिए क्योंकि जब तक ये इद्दत में है अभी भी निकाह के असरात मौजूद हैं, तो अगर पांचवीं से इसी दौरान निकाह कर लेगा तो फिर तो इसके अकद में गोया पांच औरतें जमा हो गई, लिहाजा इस चौथी की इद्दत पूरी हो जाए तो फिर अगला निकाह कर सकता है। और मैंने बताया ये वो मसला है जिसमें मर्द को भी क्या करना पड़ेगा, इद्दत गोया गुजारना पड़ती है, उससे पहले वो निकाह कर ही नहीं सकता। और ये इसी तरह है जैसे दो बहनों वाला मसला था, जैसे दो बहनों को निकाह में जमा करना जायज नहीं था, इसी तरह अगर एक बहन को तलाक बाइन दे दी है तो इद्दत के अंदर भी दूसरी बहन से निकाह नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई, वरना तो क्या खराबी लाजिम आएगी जमा बैनल उख्तैन की, वहां पर भी उस शख्स को इद्दत गुजारना पड़ेगी, जब मुतल्लका की इद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर उसकी बहन से निकाह कर सकता है। भाई बात समझ में आ गई, अब आइए आज के सबक पर। قال وإن تزوج حبلا من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تزع حملها। यहां से साहिब हिदाया ये बयान फरमाएंगे कि हामिला से निकाह जायज है या जायज नहीं। आपको बतलाएंगे कि ये जो हामिला है, यानी वो औरत जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, वो दो किस्म की हो सकती है, या तो वो हमल साबितुन नसब होगा या वो हमल साबितुन नसब नहीं होगा। यानी हमल साबितुन नसब है कि जब ये औरत इस बच्चे को जन्म देगी तो फला शख्स इसका बाप कहलाएगा, उससे उसका नसब साबित हो जाएगा, तो यह है साबितुन नसब। मसलन एक शख्स है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और वो बीवी हामिला थी, और आप जानते हैं कि हामिला की जो इद्दत है वो वज़ए हमल है, यानी जब वो बच्चे को जन्म दे दे, जब वो बच्चे को जन्म दे देगी उसकी इद्दत पूरी हो गई, उसी दिन फिर वो आगे निकाह कर सकती है। भाई तो ये औरत जिसको खामन ने तलाक दी है ये हामिला थी और ये हमल साबितुन नसब है, ये उस खावंद का बच्चा है भाई, ये उस साबका खावंद का बच्चा है, तो ये बच्चा साबितुन नसब हुआ। और बाज औकात जो हमल होगा वो साबितुन नसब नहीं होगा, मसलन एक औरत जीना से हामिला हो गई, तो ये जो हामिला है इसका बच्चा, इसका हमल वो साबितुन नसब नहीं है। तो मसला ये जिक्र फरमा रहे हैं कि हामिला से निकाह किया जाए तो क्या निकाह मुनाकिद होगा या नहीं, तो आपको बतलाएंगे कि अगर वो हमल साबितुन नसब है तो फिर तो बिल इत्तेफाक उसका निकाह नहीं होगा, उसका अगर वो निकाह करे भी तो निकाह होगा ही नहीं भाई। और अगर वो हमल साबितुन नसब नहीं है, यानी वो औरत जिना से हामिला है, तो फिर याद रखो निकाह तो जायज है, निकाह किया जा सकता है उस औरत से, लेकिन जब तक वो वज़ए हमल न कर दे, बच्चे को जन्म न दे दे, उसके साथ वती करने की इजाजत नहीं है भाई। मसला समझ में आया जी। देखिए अब किताब पर, काला व इन तज़व्वज हुबला मिन ज़िना, ये काला भाई, ये काला के अंदर जमीर जो है वो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह को राजे है, इसलिए क्योंकि ये जो आगे मतन आ रहा है ये जामे सगीर की इबारत है भाई, और जामे सगीर तसनीफ है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की। तो काला इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वह इंतज़व्वज हुबला मिन ज़िना, अगर निकाह किया हुबला मिन ज़िना, ज़िना से जो हामिला औरत है उसके साथ, याद रखो ये जो ज़िना का लफ्ज है ये दर्जे इबारत में आए और बगैर अलिफ लाम के हो तो इस पर तनवीन पड़ेंगे, जैसे व इन तज़व्वज हुबला मिन ज़िनन जाज़न निकाह, तो देखा तनवीन के साथ, और अगर इस पर अलिफ लाम हो या वक्फ करें फिर बगैर तनवीन के इसको पढ़ेंगे भाई। कहते हैं वह इन तज़व्वज हुबला मिन ज़िना, अगर किसी शख्स ने निकाह किया ज़िना से हामिला औरत के साथ, जाज़न निकाह हो, तो यह निकाह जायज है। जिना से हामिला कहा, मकसद यह है कि वो हमल साबित नसब न हो। तो वो जब हमल जब साबित नसब न हो, औरत हामिला है, तो जाजन निकाह निकाह जायज है। वला यतउहा हत्ता तज़ा हमलहा, और हां अलबत्ता वती न करे इसके साथ, सोहबत न करे वो शख्स जो जिसने निकाह किया है, हत्ता तज़ा हमलहा, यहां तक कि ये औरत अपने हमल को जन्म दे दे। वज़ हमल का क्या माना होता है? हमल को जन्म देना। हत्ता तज़ा हमलहा, यहां तक कि वो औरत जन्म दे दे हमलहा, अपने हमल को। वहादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और ये तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। तरफेन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं वो औरत जो जिना से हामिला है उसके साथ निकाह जायज है, अलबत्ता वती नहीं की जा सकती जब तक वो बच्चे को जन्म न दे दे। जबकि आगे बतलाएंगे कि इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसके साथ निकाह ही जायज नहीं है। जैसे वो औरत जिसका हमल साबितुन नसब हो उसके साथ जैसे निकाह नहीं जायज, इसी तरह ये औरत जिसका हमल साबितुन नसब नहीं है इसके साथ भी निकाह जायज नहीं। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अन निकाह फासिद, उनकी ये निकाह फासिद है। याद रखो निकाह के बारे में भी किताबों में आपको इबारत मिलेगी कि यह निकाह फासिद है, और कभी इबारत होगी कि यह निकाह बातिल है, और इसी तरह बैअ के बारे में भी कभी इबारत मिलेगी कि यह बैअ बातिल है या यह बैअ फासिद है। तो निकाह के सिलसिले में याद रखो कि निकाह फासिद और बातिल इनमें कोई फर्क नहीं है। जो निकाह फासिद है वो निकाह बातिल है, जबकि बैअ के अंदर बैअ फासिद और है, बैअ बातिल और है। बैअ बातिल वो होती है जो अपनी जात के एतबार से ही जायज नहीं, यानी वो चीज मबिया ही नहीं है, जिसकी बैअ की जा रही है उसमें मबिया बनने की सलाहियत ही नहीं है। जबकि बैअ फासिद वो होती है जिसमें जिस चीज को बेचा जा रहा है वो मबीहा तो है, लेकिन उसमें कोई और खराबी आ गई, कोई शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है, तो फिर इस सूरत के अंदर ये बैअ फासिद हो जाएगी। मसलन एक शख्स दूसरे को कहता है कि मैं तुम्हारी ये साइकिल खरीद लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे इतने पैसे कर्ज दे दो। अब देखो यह साइकिल खरीदने के साथ शर्त लगा रहा है कर्ज की, तो यह बैअ फासिद है भाई। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि निकाह फासिद कहें या बातिल कहें एक ही बात है, और बैअ के अंदर बातिल कहें तो वो जात के एतबार से ही दुरुस्त नहीं वो बैअ, और बैअ फासिद कहें तो मालूम हुआ जात के एतबार से सही है लेकिन वसफ के एतबार से उसमें खराबी है भाई। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह निकाह फासिदुन, इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह निकाह फासिद है यानी बातिल है, यह निकाह हुआ ही नहीं। वह इन कानल हमलु साबितन नसबी, और अगर वह हमल जो है वह साबितुन नसब हो, फन निकाह बातिलुन बिल इजमा, फिर तो निकाह बातिल है बिल इजमा यानी बिल इत्तेफाक। हमारे तीनों अइमा के नजदीक अगर हमल साबितुन नसब है तो उस हामिला के साथ निकाह हो ही नहीं सकता, निकाह बातिल है। ले अबी यूसुफ रहमहुल्ला, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला की दलील आ गई। मैंने आपको बतलाया था साहिब हिदाया का क्या तरीका है, हमारे अइमा के दरमियान जब इख्तिलाफ हो तो जो राजह मजहब हो उसको पहले जिक्र करते हैं और मरजूह को बाद में। तो पहले तरफैन के मजहब को जिक्र किया, फिर इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के मजहब को, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला का मजहब मरजूह है और तरफैन का मजहब राजह है। और जब दलाइल जिक्र फरमाते हैं तो पहले मरजूह मजहब के दलाइल जिक्र फरमाते हैं और फिर राजह मजहब के दलाइल जिक्र फरमाते हैं, ताकि ये राजह मजहब के दलाइल भी हो जाएं और जो मरजूह मजहब के दलाइल गुजरे थे उनका जवाब भी हो जाए भाई। तो इलिया भी यूसुफ रहमहुल्लाह, तो इमाम भी यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल इम्तिनाअ फिल असल लिहुरमतिल हमली वहादल हमलु मुहतरमुन। भाई दो किस्म के हमल बयान हो गए, एक हमल वो है जो साबितुन नसब है, एक वो हमल है जो गैर साबितुन नसब है। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह वो हमल जो गैर साबितुन नसब है उसको कियास करते हैं उस हमल पर जो साबितुन नसब है, यानी साबितुन नसब को असल करार देते हैं, किसको साबित नसब, वो हमल जो साबित नसब है जिसका नसब साबित है उसको असल करार देते हैं और फरमाते हैं कि वो हमल जो साबित नसब होता है वहां निकाह जायज नहीं होता। क्यों नहीं जायज होता? क्योंकि वो हमल मोहतरम है, क्योंकि वो हमल मोहतरम और मुअज्जज है, वो साबित नसब है, उसका नसब साबित है, लिहाजा एहतराम हमल की वजह से इस औरत से निकाह ही नहीं जायज जिसके पेट में ये मोहतरम हमल मौजूद है। तो ये हुआ असल। तो साबित नसब हमल के अंदर निकाह क्यों मुमतनिया? एहतराम हमल की वजह से। और यही इल्लत उस हमल में भी है जो गैर साबित नसब है, भाई वो भी मोहतरम है। भाई मोहतरम इसलिए है क्योंकि जो हमल है वो जो बच्चा है पेट में उसका तो कोई कसूर नहीं। वाती और मौतुआ जिन्होंने जिना किया उनका तो जुर्म है, लेकिन जो बच्चा है पेट में उसका तो कोई जुर्म नहीं, लिहाजा वो भी मोहतरम हमल हुआ। जैसे साबित नसब हमल मोहतरम था, इसी तरह गैर साबित नसब हमल भी क्या है? मोहतरम है। और साबित नसब हमल का क्या हुक्म था? कि वहां निकाह की इजाजत नहीं थी। तो यहां पर गैर साबित नसब का भी वही हुक्म होगा, क्योंकि यह हमल भी उसी की तरह है। तो गैर साबित नसब हमल की सूरत में भी उस औरत से निकाह जायज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो असल क्या हुआ? वो हमल जो साबित नसब है और उसका हुक्म क्या है कि उस औरत के साथ निकाह जायज नहीं, और गैर साबित नसब उसको भी इसी हमल पर कयास किया। और जैसे ये मोहतरम है वो भी क्या है? मोहतरम। और यहां हुरमत निकाह का हुक्म है तो वहां भी हुरमत निकाह का हुक्म होगा, निकाह जायज नहीं होगा। अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल इम्तिना फिल असली, के इम्तिना यानी मुमतनिया होना, यानी निकाह का मुमतनिया होना, अन्नल इम्तिना के निकाह का मुमतनिया होना फिल असली असल के अंदर, यानी वो हमल जो साबित नसब है उसके अंदर निकाह का मुमतनिया होना, लिहुरमतिल हमली, वो इस हमल की हुरमत और एहतराम की वजह से है। वहादल हमलु मोहतरमुन, और ये जो हमल गैर साबित नसब है वो जो जिना से है ये भी मोहतरम है, लिअन्नहु ला जिनायत मिन्हु, क्योंकि इसकी तरफ से भी कोई जुर्म नहीं पाया गया। वलिहादा लम यजुज इसकातुहु, कहते हैं इसीलिए तो इस हमल को गिराना भी जायज नहीं है, इसको साकित करवाना यानी इस हमल को जाया करवाना भी जायज नहीं। याद रखो हमल जो है शुरू में आहिस्ता आहिस्ता गोश्त के लोथड़े की शक्ल में बढ़ता चला जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आजा जाहिर होने लगते हैं, यहां तक कि चार महीने तक आजा वगैरह बन जाते हैं और फिर उसमें रूह डाल दी जाती है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि चूंकि ये हमल जो जिना से है इसका कोई कसूर नहीं है तो ये हमल भी मोहतरम है। वलिहादा लम यजुज इसकातुहु, इसीलिए इस हमल को गिराना और इसको जाया करवाना जायज नहीं है। और उलमा लिखते हैं ये उस वक्त तक है जब तक अभी आजा वगैरह जाहिर न हुए हों, और ये अतिब्बा ही बताएंगे कि कितनी उम्र में आजा जाहिर हो जाते हैं और कितनी उम्र में आजा जाहिर नहीं होते। जबकि महशी हजरात फरमाते हैं कि हमारे इस जमाने में अब वो हमल जो जिना से हो उसके चाहे आजा जाहिर ही क्यों ना हो गए हों तो उसको गिराना जायज है, इल्ला ये कि उसमें रुह पड़ चुकी हो, जब रुह पड़ जाए फिर नहीं गिरा सकते वरना तो फिर कत्ल लाजिम आएगा। तो उससे पहले पहले चाहे आजा जाहिर ही क्यों ना हो गए हों लेकिन हमल जिना से है तो उसको गिराना जायज है। तो मुहशी फरमाते हैं कि इसी पर फतवा है कि हमारे जमाने में इस हमल को रुह पड़ने से पहले पहले गिराना भी जायज है और इसी पर फतवा भी है। भाई तो कहते हैं यह हमल भी मोहतरम है, लिअन्नहु ला जिनायत मिन्हु, क्योंकि इसकी तरफ से कोई जुर्म नहीं है। वलिहादा लम यजुज इसकातुहु, और इसीलिए तो इस हमल को जाया करवाना जायज नहीं, इसको गिराना जायज नहीं क्योंकि यह मोहतरम है, यह हमल जो जिना से है। यह तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील थी। आगे तरफैन की दलील आ गई। वलहुमा, तरफैन की दलील यह है कि अन्नहा मिनल मुहल्लालाति बिन्नस्सी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने क्या बयान फरमाया कि जैसे वो हामिला जिसका हमल साबित नसब है जैसे उसके साथ बिल इत्तेफाक निकाह बातिल है, निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह वो हामिला जिसका हमल गैर साबित नसब है उसके साथ भी निकाह बातिल है। दोनों में एहतराम हमल की वजह से हुरमत निकाह है भाई। जबकि तरफैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि यह जो औरत जीना से हामिला है यह मुहल्लात में से है। किसमें से? जिनसे निकाह करना हलाल है, जो महल्ले निकाह हैं। भाई देखिए, तरफैन फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ने उन औरतों को जिक्र फरमाया जिनसे निकाह हराम है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तो पूरी तफसील जो पीछे बयान हो चुकी उन औरतों का जिक्र है जिनसे निकाह हराम है। और आगे अल्लाह फरमाते हैं व उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, इनके अलावा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, यानी उनसे निकाह कर सकते हो। और ये जो मुहर्रमात थी इनके अंदर हामिला मीना जिना का जिक्र नहीं था, इनमें हामिला मीना जिना का जिक्र नहीं था, तो मालूम हुआ वो मुहल्लात में दाखिल है इस नस की वजह से। वह उहिल्लकुम मा वरा अज़ालिकुम, ये जो नस है इसकी वजह से ये हुबला मीना जिना जो है ये मुहल्लात में से है, इससे निकाह हो सकता है। इमाम अबू यूसुफ तो फरमाते थे निकाह नहीं हो सकता, लेकिन तरफैन फरमाते हैं निकाह हो सकता है। वलहुमा तरफैन की दलील यह है कि अन्नहा मिनल मुहल्लाति बिन्नसी, कि ये जो हामिला मिनज जिना है ये नस की वजह से मुहल्लात में से है। वहुरमतुल वती, आगे जवाब दे रहे हैं कि अच्छा अगर ये मुहल्लात में से है तो फिर इसके साथ आप वती को हराम क्यों करार देते हैं? आप कहते हैं निकाह कर लिया जाए लेकिन वती करने की इजाजत नहीं, जब ये वज़ई हमल कर ले, जब ये हमल को जन्म दे दे फिर उसके बाद खावंद वती कर सकता है। तो उसका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वहुरमतुल वती, और ये जो वती की हुरमत है, कैला यस्किया माउहू जरा गैरी ही, कैला यस्किया माउहू, ताकि कहीं इस खावंद का पानी जो है वो सैराब न करे। माउहू खावंद का पानी, मुराद खावंद की मनी है जिससे औलाद की पैदाइश होती है। तो कैला यस्किया माउहू, ताकि कहीं खावंद का जो पानी है वो सैराब न करे, जरा गैरी ही, गैर की खेती को, ताकि कहीं खावंद का पानी गैर की खेती को सैराब न करे। आप जानते हैं कि कुरान के अंदर औरत को खेती के साथ तशबीह दी गई है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, यानी उनके जरिए तुम्हें औलाद हासिल होती है। तो कहते हैं ये जो वती की हुरमत है, कैला यस्किया माउहू ज़रा गैरिही, ताकि कहीं इस खावंद का पानी जो है वो गैर की खेती को सैराब न करे, क्योंकि इस औरत के पेट में गैर का बच्चा है, अगरचे साबितुन नसब नहीं है लेकिन गैर का बेटा है किसी और का, तो ये गैर की खेती को सैराब करना लाजिम आएगा। और ये आपके हाशिए में हदीस भी दी हुई है, लिकौलिहि अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फला यस्कियन्ना माउहू ज़रा गैरिही, फला यस्कियन्ना, तो हरगिज सैराब न करे मा उहू उसका पानी, जर अगैर ही, गैर की खेती को। जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखता है हर गिज उसका पानी गैर की खेती को सैराब न करे। तो यहां पर भी अगर इस शख्स को वती की इजाजत दे दी जाए इस हुबला मीना जीना से, तो इस सूरत में गैर की खेती को सैराब करना लाजिम आएगा, और उससे तो हदीस के अंदर मना किया गया है, लिहाजा इसको वती की इजाजत नहीं होगी। आगे देखिए, वल इम्तिनाउ फी साबितिन नसबी लिहक साहिबिल माई वला हुरमत लिज़ानी, यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के दलील का। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला ने ये जो जिना वाला हमल है इसको कियास किया था उस हमल पर जो साबितुन नसब है, और वो मुहतरम था तो ये भी क्या है, मुहतरम, और उसके एहतराम की वजह से निकाह जायज नहीं था, तो ये जो जिना से हमल है इसकी वजह से भी निकाह जायज नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं, वो औरत जिसका हमल साबितुन नसब है उसके अंदर जो निकाह की हुरमत है उससे निकाह करना हराम है, वो इसके हमल के एहतराम की वजह से नहीं है बल्कि वो साहिब मां की वजह से है। किसकी वजह से? साहिब मां, यानी ये जिसका बच्चा इसके पेट में है। भाई देखो ना, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया था, फिर ये शख्स इसको तलाक दे देता है जब ये हामिला थी, तो अब ये औरत के पेट में जो बच्चा है वो खावंद का है, और ये औरत आगे निकाह नहीं कर सकती। किस वजह से नहीं कर सकती? क्योंकि इसके पेट में साबिका खावंद का बच्चा है, तो उस खावंद के हक की वजह से इसको आगे निकाह की इजाजत नहीं। तो लिहाजा यहां इस औरत से जो निकाह की मुमानियत है वो इसके साबिका खावंद की वजह से है, इसके हमल की वजह से नहीं, कि हमल का एहतराम है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल इम्तिनाउ फी साबितिन नसबी, और वो जो निकाह का मुमतनेउ होना है साबितुन नसब हमल के अंदर, लिहक साहिबिल माई, वो साहिबुल मा के हक की वजह से है। साहिब मा यानी जिसकी वो खेती है, यानी वो जो साबका खावन था उसके हक की वजह से है, उसके हक की वजह से निकाह मुमतने है। वला हुरमत अली जानी, और जानी की तो कोई हुरमत नहीं है, उसका तो कोई एहतराम नहीं है। फिर सुनो दलील। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि साबित नसब जो हमल है उस औरत से निकाह हराम है इस हमल के एहतराम की वजह से। हम कहते हैं नहीं, इस औरत के साथ निकाह हराम है हमल की वजह से नहीं, बल्कि साहिब हमल की वजह से, यानी साबका खावंद की वजह से। इसलिए क्योंकि यह औरत जब बच्चे को जन्म देगी ये बच्चा उसी खावंद का शुमार होगा, गोया ये औरत अभी भी मीन वजह उसी खावंद का फिराश है। यह औरत अभी भी क्या है? मीन वजह उसी खावंद का फिराश है। क्योंकि आपने पढ़ लिया कि जब कोई शख्स औरत को तलाक देता है तो इद्दत के अंदर का खर्चा भी खावंद के जिम्मे होता है, इद्दत के अंदर खावंद उसको घर से निकलने से भी मना कर सकता है, और इसी तरह इस इद्दत के अंदर अगर ये औरत जो है हामिला है तो इसकी इद्दत वज़ए हमल तक है भाई, जब यह हमल को जन्म दे देगी तब इसकी इद्दत पूरी होगी, और ये जो हमल है ये उसी साबका खावंद का है तो ये उसी की औलाद शुमार होगा, इसका नसब उससे साबित हो जाएगा। तो मालूम हुआ यह औरत अभी भी बाज एतबार से उसी खावंद का फिराश है। जब यह उसी खावंद का फिराश है तो इसकी वजह से निकाह हराम है, इस हमल की हुरमत की वजह से निकाह नहीं हराम, बल्कि पहले खावंद क्या फिराश होने के एतबार से इसके साथ निकाह जायज नहीं है। तो यहां पर यह औरत जिसका हमल साबितुन नसब है इसके साथ निकाह जायज नहीं। क्यों नहीं जायज? साहिब हमल की वजह से, वो जो साबका खावन था यानी उसके एहतराम की वजह से। और जबकि वो औरत जो जिना से हामिला है वहां तो वो हमल जानी का है भाई, और जानी का तो कोई एहतराम नहीं। तो देखा दोनों में फर्क आ गया, तो जानी का कोई एहतराम नहीं लिहाजा उस औरत से निकाह जायज होगा, और इधर ये हमल जो साबितुन नसब है यहां वो खावन जो था पहला वो मुहतरम है लिहाजा उसकी वजह से निकाह जायज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यह माना है वल इम्तिनाउ फी साबितिन नसबी लिहक साहिबिल माई, और वो जो निकाह का मुमतनेअ होना है साबितुन नसब के अंदर वो साहिबुल मा के हक की वजह से है, यानी वो खेती वाले के हक की वजह से है। वला हुरमत लिज़ानी, जबकि दूसरी तरफ जानी की तो कोई हुरमत नहीं है तो उसकी वजह से निकाह बातिल नहीं होगा, वहां निकाह जायज है। आगे देखिए फइन तज़व्वजा हामिलन मिन सबी फन्निकाहु फासिदुन। भाई देखो, अगर कैदियों के अंदर कोई हामिला औरत आ जाए, कैदियों के अंदर जो मर्द और औरत कैदी बनाए जाते थे उनको गुलाम और बांदियां बना लिया जाता था, तो अब इन बांदियों के अंदर अगर कोई औरत हामिला थी तो क्या इसके साथ निकाह जायज है? तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि भाई ये जो हामिला है इसका हमल साबितुन नसब है। जाहिर सी बात है ये किसी की बीवी होगी तो इसका हमल क्या है? साबितुन नसब है। और हम आपको जाब्ता बतला चुके हैं कि वो हामिला जिसका हमल साबितुन नसब हो उसके साथ निकाह नहीं हो सकता भाई, तो इसका भी यही हुक्म है। तो कहते हैं फइन तज़व्वजा हामिलन मिन सबी, सबी उनका माना है कैद करना। फइन तज़व्वजा हामिलन मिन सबी, बस अगर निकाह कर लिया किसी हामिला से मिनस सब ये कैद से, यानी जो कैद होकर आई थी और हामिला थी, फन निकाह फासिदुन, तो ये निकाह फासिद है यानी बातिल है, ये भी निकाह नहीं होगा। लिअन्नहु साबितुन नसबी, इसलिए क्योंकि इसका हमल भी साबितुन नसब है भाई। आगे देखिए व इन ज़व्वजा उम्मा वलदिही वही हामिलुम मिनहु फन निकाह बातिलुन। भाई मैंने आपको बतलाया था कि फिराश जो है, फिराश यानी किसी औरत का किसी मर्द के बच्चों को जन्म देने के लिए मुख्तस हो जाना, इस औरत को फिराश कहते हैं कि ये उस मर्द का फिराश है। और फिर ये फिराश तीन किस्म पर है, एक फिराश कवी है, एक फिराश मुतवस्सित है और एक फिराश ज़ईफ है। फिराश कवी बीवी है, जौजा है, मनकूहा है, जिसे निकाह किया है। ये मनकूहा से जो भी औलाद पैदा होगी वो इसी खावंद की शुमार होगी। और अगर खावंद इस औलाद की नफी करना चाहता है अपने आप से तो लियान करना पड़ेगा, और फिर लियान के बाद काजी फैसला करेगा और फिर उस मर्द से, उस खावंद से इन बच्चों का नसब काट देगा। अब ये सिर्फ इस औरत के बच्चे शुमार होंगे, उस खावंद के बच्चे शुमार नहीं होंगे। तो बीवी जो है ये फिराश कवी है, इसमें बच्चे का नसब खुद बखुद खावंद से साबित होता है और नफी बगैर लियान के नसब की नहीं हो सकती। और सबसे ज़ईफ फिराश जो है बांदी का है। बांदी जो है उससे जो औलाद पैदा हो वो खुद बखुद आका की शुमार नहीं होती, इल्ला ये कि आका खुद दावा कर दे कि ये मेरा बच्चा है तो फिर ये बच्चा आका का शुमार होगा। तो ये भी फिराश है आका का, लेकिन ज़ईफ है, हत्ता के बगैर दावे के ये बच्चा उसका शुमार ही नहीं होता भाई। और जबकि फिराश मुतवस्सित जो है वो उम्मे वलद है। जब बांदी ने बच्चे को जन्म दे दिया फिर आका कह दे कि ये मेरा बच्चा है तो याद रखो ये बांदी अब उम्मे वलद बन गई। देखो लफ्जों पर गौर करो, उम्मुल वलदी, उम्मुल वलद उसके बच्चे की मां, या यूं कहे उम्मु वलदी ही उसके बच्चे की मां बन गई। तो ये फिराश मुतवस्सित है। ये जो उम्मे वलद है ये आगे चलकर इसने फिर एक और बच्चे को जन्म दिया, याद रखो ये बच्चा भी खुद बखुद इसी आका का शुमार होगा, क्योंकि ये औरत पहले भी इसी के बच्चे को जन्म दे चुकी है जिसका वो इकरार कर चुका है, तो ये दूसरा बच्चा भी उसी का शुमार होगा। लेकिन अगर आका इसकी नफी करना चाहे तो बगैर लिहान की नफी कर सकता है, कह दे ये मेरा बच्चा नहीं है तो ये अब उसका बच्चा शुमार नहीं होगा भाई। तो ये फिराश मुतवस्सित हुआ। तो कितनी किस्म के हो गए फिराश? तीन। फिराश कवी बीवी, जहां अब जो बच्चा पैदा होगा वो खामन का शुमार होगा और अगर वो बच्चे की नफी करना चाहता है तो लिहान करना पड़ेगा। फिराश मुतवस्सित उम्मे वलद है, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी आका का शुमार होगा लेकिन अगर वो नफी करना चाहे तो बगैर लिहान की नफी कर सकता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। और सबसे ज़ईफ फिराश जो है बांदी है कि जिससे पैदा होने वाला बच्चा खुद बखुद आका का शुमार ही नहीं होगा जब तक आका खुद ना कह दे कि ये मेरा बच्चा है भाई। तो अब सूरत मसला यह है, एक शख्स की उम्मे वलद है, एक शख्स की यानी वो पहले एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और आका ने कहा था ये मेरा बच्चा है। अब ये उम्मे वलद हामिला है और आका ने कह भी दिया है, एतराफ भी कर लिया है कि ये मेरा हमल है, ये हमल मुझसे है। ये जो उम्मे वलद है जो आका से ही हामिला है, इसका निकाह आका करवाना चाहता है आगे किसी और से। कहते हैं जब ये हामिला है तो आका इसका निकाह नहीं करवा सकता। हां अगर ये हामिला ना होती फिर आका निकाह करवा सकता था भाई। आका अपनी बांदी का जिसे मर्जी निकाह करवाए, आका के लिए बांदी हलाल है, लेकिन जब किसी और से निकाह करवा देगा तो अब आका के लिए ये बांदी हराम हो गई, अब सिर्फ वो खावंद के लिए हलाल है। तो चाहे वो इसकी उम्मे वलद हो उसका भी निकाह करवा सकता है, चाहे वैसे आम बांदी है उसका भी किसी और से निकाह करवा सकता है। लेकिन यहां मसला ये है कि ये उम्मे वलद हामिला है भाई, और इसके आका इकरार कर चुका है कि ये जो हमल है ये मुझसे है। मालूम हुआ ये हमल साबितुन नसब है। ये हमल क्या है? और जो भी हामिला ऐसी हो कि उसका हमल साबितुन नसब हो उसका निकाह बातिल होता है, उसे निकाह नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा आका ने इसका बेशक निकाह करवाया लेकिन ये निकाह नहीं हुआ, ये निकाह बातिल है। तो कहते हैं वह इन ज़व्वजा उम्मा वलदिही, और अगर आका ने निकाह करवा दिया अपनी उम्मे वलद का, वही हामिलुम मिन्हु, और हाल यह है कि यह उम्मे वलद आका से हामिला है, आका से हामिला है। कैसे पता चलेगा? आका इकरार करेगा तो पता चलेगा, वैसे तो पता नहीं चल सकता। तो लिहाजा मालूम हुआ आका ने इकरार भी कर लिया कि मुझसे हामिला है, तो इसका आका ने निकाह करवाया। तो कहते हैं फन निकाह बातिलुन, तो यह निकाह बातिल है। क्यों बातिल है? क्योंकि यह हमल साबितुन नसब है, और जो हामिला भी उसका हमल साबित नसब हो, उसका निकाह बातिल होता है। आगे देखिए, दलील देखिए, कहते हैं लिअन नहा फिराश उन लि मौलाहा, इसलिए क्योंकि ये अपने आका का फिराश है। ये उम्मे वलद फिराश मुतवस्सित है ना, तो कहते हैं लिअन नहा फिराश उन लि मौलाहा, इसलिए क्योंकि ये बांदी अपने आका का फिराश है। हत्ता यसबुतु नसबु वलदिहा मिनहु, भाई यहां पर भी याद रखिए, हत्ता नसब नहीं देगा, हत्ता यसबुतु नसबु वलदिहा मिनहु, यहां तक के साबित हो जाता है इसके बच्चे का नसब, मिनहु आका से, मिन गैरी दावतिन, बगैर दावे के। भाई आम बांदी बच्चे को जन्म दे तो क्या वो खुद ब खुद आका का शुमार होगा? नहीं, आका दावा करेगा, इकरार करेगा तो फिर साबित होगा। लेकिन उम्मे वलद अगर बच्चे को जन्म दे वो खुद ब खुद किसका शुमार होगा? आका का। भाई उम्मे वलद पहले एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और आका ने कहा था वो बच्चा मेरा है, तो ये क्या बन गई? उम्मे वलद। अब ये आगे जिस बच्चे को भी जन्म देगी वो खुद ब खुद किसका शुमार होगा? आका का। लेकिन अगर आका नफी करना चाहे तो बगैर लिहान के भी नफी कर सकता है। तो यही बयान कर रहे हैं लियान्नहा फिराशुन लि मौलाहा, कि ये जो उम्मे वलद है ये आका का फिराश है। हत्ता यसबुतु नसबु वलदिहा मिनहु, यहां तक कि इसके बच्चे का नसब भी साबित हो जाता है, मिनहु इसी आका से साबित हो जाता है, मिन गैरी दावतिन, बगैर दावे के। बगैर दावे के ही इस बच्चे का नसब किसे साबित हो जाता है? आका से। याद रखो यहां दावतुन लफ्ज आया, मिन गैरी दावतिन, ये दावत का लफ्ज मुसल्लसुल फा है। क्या है? मुसल्लसुल फा। मुसल्लसुल फा उस कलिमे को कहते हैं कि जिसके पहले हर्फ पर तीनों हरकतें जायज हों, और कलिमे का वजन किससे निकालते हैं? फा आइन लाम के जरिए, यानी वो कलिमा जिसके फा पर तीनों तरह की हरकतें जायज हों तो उसको क्या कहते हैं? मुसल्लसुल फा। तो इसमें भी दाल पर तीनों हरकतें अरबी में इस्तेमाल होती हैं, दावतुन, दिअवतुन और दुअवतुन। अगर दावतुन हो तो ये इसका माना अल्लाह से दुआ करना, और अगर दिअवतुन हो तो फिर इसका माना है नसब का दावा करना, और अगर दुअवतुन हो तो इसका माना है खाने की दावत, भाई खाने पर बुलाना, खाने की दावत। भाई तो दावतुन दाल के फतहा के साथ हो तो अल्लाह से दुआ करना, दावतुन दाल के कसरत के साथ हो तो नसब का दावा करना, और दुअवतुन हो तो फिर खाने की दावत देना, इसका माना होता है। बात समझ में आ गई? तो बहरहाल आप इसको दावा भी पढ़ सकते हैं और दावा दाल के फतहा के साथ भी पढ़ सकते हैं। आम लुगत के अंदर दावतुन का माना भी दावा है। भाई तो कहते हैं हत्ता यसबुतु नसबु वलदिहा, यहां तक के साबित हो जाता है इस उम्मे वलद के बच्चे का नसब, मिन हु आका से, मिन गैरी दावतिन, बगैर दावे के। फलौ सहा निकाहू, तो लिहाजा ये निकाह बातिल है। फलौ सहा निकाहू, अगर ये निकाह सही हो जाए, लहसल अल जमउ बैनल फिराशैनी, तो जमा बैनल फिराशैन हासिल हो जाएगा, यानी जमा बैनल फिराशैन लाजिम आएगा, यानी इस औरत में दो फिराश जमा हो जाएंगे। ये अपने आका की भी फिराश है, और निकाह सही हो गया तो अपने खावंद का भी फिराश बन गई, और जमा बैनल फिराश है तो नहीं हो सकता, एक औरत दो मर्दों के लिए फिराश नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये निकाह सही नहीं। इल्ला अन्नहु गैरु मुतअक्किदिन हत्ता यंतफिल वलदु बिन्नफी मिन गैरि लिआनिन, तो ये आका का फिराश है लेकिन फिराश कवी नहीं है, फिराश मुतवस्सित है। तो चुनांचे अगर आका बच्चे की नफी करना चाहे तो बगैर लिहान की क्या कर सकता है? नफी कर सकता है। यही बयान कर रहे हैं, इल्ला अन्नहु गैरु मुतअक्किदिन, मगर यह कि इसका फिराश होना वो पक्का नहीं है। हत्ता यंतफिल वलदु बिन्नफी मिन गैरि लिआनिन, यहां तक कि बच्चा जो है वो मुंतफी हो जाता है बिन्नफी, नफी करने से। बच्चे का इनकार करेगा तो वो उसका नसब मुंतफी हो जाएगा, मिन गैरी लिआन, इन बगैर किसी लिआन के। फला युअतबरु मालम यत्तसिल बिहिल हमलू, लिहाजा इसका फिराश होना मुअतबर नहीं है जब तक उसके साथ हमल न मिल जाए। ये समझ लो अच्छी तरह। भाई देखिए, ये जो उम्मे वलद है ये फिराश मुतवस्सित है, इससे जो बच्चा पैदा होगा किसका शुमार होगा? आका का। लेकिन वो नफी करना चाहे तो बगैर लियान के भी नफी कर सकता है। तो उम्मे वलद का आका कहीं निकाह करवाना चाहे निकाह करवा सकता है। एक बच्चा जन्म दिया था वो आका ने कह दिया था मेरा है, अब आगे बाद में चल के आका इस बांदी का किसी और से निकाह करवाना चाहता है, आका करवा सकता है। तो इस पर सवाल पैदा, फिर तो जमा बैनल फिराशैन लाजिम आएगा, ये आका का भी फिराश है और खावंद का भी फिराश। जवाब ये कि ये फिराश तो है लेकिन ये फिराश होना इसका मजबूत नहीं, कवि नहीं है। हां अगर ये हामिला हुई और आका ने इकरार कर लिया कि ये मेरा हमल है तो फिर इसका फिराश होना पक्का हो जाएगा
जी।
तो उस वक्त इसका आगे निकाह नहीं करवा सकता, लेकिन अगर ये हामिला नहीं तो फिर इसका फिराश होना पक्का नहीं, जब फिराश होना पक्का नहीं तो आगे निकाह करवा सकता है
जी।
ये माना है फला युअतबर, लिहाजा इसका ये फिराश होना मुअतबर नहीं है। मालम यत्तसिल बिहिल हमलु, जब तक इसके साथ हमल ना मिल जाए। तो हासिल कलाम क्या हुआ, उम्मे वलद है और हामिला है और आका ने इकरार कर लिया ये मेरा हमल है तो आगे निकाह नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर भी जमा बैनल फिराशें लाजिम आएगा। और अगर उम्मे वलद तो है लेकिन हामिला नहीं तो फिर इसका आका आगे निकाह करवा सकता है, क्योंकि फिराश होना इसका पक्का नहीं, लिहाजा अब वो उस खावंद का फिराश बन जाएगी, आका का फिराश अब ना रहेगी। आप जरा मतन पे आओ, मतन पे आओ फिर दोबारा। वह इन जव वजह उम्मा वलदी ही, अगर आका ने निकाह करवाया अपनी उम्मे वलद का, वह यह हामिल मिन हो, इस हाल में कि यह उम्मे वलद आका से हामिला है, यह कैद बढ़ा दी मतन के अंदर भाई कि आका ने इकरार किया हो यह मुझसे हामिला है, फिर पक्का हो गया यह आका का फिराश है। जब आका का फिराश है तो अब इसका आगे निकाह जायज नहीं, लेकिन अगर आका ने इकरार नहीं किया कि यह मुझसे हामिला है, उम्मे वलद है हामिला भी है लेकिन आका ने इकरार नहीं किया, तो इसका आका आगे निकाह करवा सकता है। तो ये वही हामिल मिनहु, ये कैद जरूरी है भाई, वरना निकाह बातिल नहीं होगा भाई। सवाल पैदा होता है कि भाई आका ने अगरचे इकरार नहीं किया कि ये बच्चा ये हमल मेरा है, लेकिन उम्मे वलद से जो भी बच्चा पैदा होता है वो शुमार ही किसका होता है, आका का होता है, जब तक आका नफी ना कर दे। तो फिर कैसे इसका निकाह आगे जायज हो जाएगा जब आका ने इकरार नहीं किया। तो जवाब ये कि उम्मे वलद से पैदा होने वाला बच्चा आका का शुमार होता है, लेकिन आका नफी करना चाहे तो नफी कर सकता है या नहीं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो जैसे आका जुबान से नफी कर सकता है, इसी तरह वो दलालतन भी नफी कर सकता है, कोई ऐसा फेल कर दे जिससे दलालत हो जाए कि ये नसब की नफी कर रहा है। तो यहां पर भी अगर उम्मे वलद है हामिला भी है लेकिन आका ने अभी तक इकरार नहीं किया ये हामिला मुझसे है, इसका वो आगे निकाह करवा रहा है, मालूम हुआ वो बच्चे के नसब की अपने से नफी कर रहा है, सराहतन तो नहीं लेकिन दलालतन वो नफी कर रहा है इस बच्चे के नसब की। तो ये बच्चा क्या हुआ, गैर साबित नसब। जब गैर साबित नसब हुआ तो इसका निकाह आगे हो जाएगा इस उम्मे वलद का। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, قال ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح قال, ये जमीर भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को राजे है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, वमन वतिअ जारियतहु, और जिसने सोहबत की अपनी बांदी से, सुम्म ज़व्वजहा, फिर उसका निकाह करवा दिया, जाज़न निकाह, तो ये निकाह जायज है भाई। देखिए, आजाद औरत जब खावंद उसको तलाक देता है तो वो तीन हैज गुजारती है, फिर उसको आगे निकाह की इजाजत होती है। वजह यह ताकि पता चल जाए कहीं ये खावंद से हामिला तो नहीं, कहीं इसके पेट में साबिका खावंद की औलाद तो नहीं। तो तीन हैज में पता चल गया, अब वो आगे जहां चाहे निकाह कर सकती है। इसी तरह बांदी के अंदर दो हैज बांदी गुजारेगी, अगर उसको खावंद तलाक दे देगा तो वो दो हैज उसकी इद्दत है, वो दो हैज गुजारेगी। और बांदी की तो खरीदो फरोख्त भी होती है, तो बांदी को जब भी कोई शख्स खरीदेगा वो आका के लिए हलाल होगी, वो उसे सोहबत कर सकता है, लेकिन फौरन सोहबत नहीं कर सकता, बल्कि वहां पर भी वो एक हैज इंतजार करेगा ताकि पता चल जाए कि ये बांदी अपने साबका मालिक से कहीं हामिला तो नहीं
जी।
तो इसको कहते हैं इस्तिबरा। क्या कहते हैं? इस्तिबरा। बराअत, बराअत का माना है सफाई भाई। इस्तिबरा यानी रहम की सफाई को तलब करना, यानी रहम की सफाई का पता चलाना, यूं तर्जमा कर लो, रहम की सफाई का पता चलाना कि रहम यानी उसके अंदर हमल तो नहीं है। तो बांदी को जो भी शख्स खरीदेगा उस पर इस्तेबरा लाजिम है, वाजिब है, एक हैज उसको इंतजार करना पड़ेगा। जब एक हैज पूरा गुजर जाएगा, अब पता चल गया कि बांदी साबका मालिक से हामिला नहीं, अब नए मालिक के लिए सोहबत जायज हो जाएगी। अब सूरत मसला यह है कि एक शख्स की बांदी है और वो आका उसे सोहबत भी करता है, तो अब आका इस बांदी का किसी और से निकाह करवाता है, तो क्या यह निकाह हो जाएगा? कहते हैं हां भाई, यह निकाह हो जाएगा। भाई कैसे निकाह होगा? आका इसके साथ सोहबत करता है। कहते हैं यह आका का फिराश तो है, लेकिन इसका फिराश होना ज़ईफ है। क्या है? ज़ईफ है। तो लिहाजा यहां पर जमा बैनल फिराशैन वाली खराबी लाजिम नहीं आएगी। अब वो खावंद का फिराश बन जाएगी, आका का फिराश है ही नहीं। उस समझो, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वमन वती अजारियतहु सुम्म ज़वजहा जाज़न निकाहु, और जिस शख्स ने अपनी बांदी से सोहबत की फिर उसका निकाह करवा दिया, जाजन निकाह, तो ये निकाह जायज है। लिअन्नहा लैसत बिफिराशिन लिमौलाहा, इसलिए क्योंकि ये बांदी अपने आका का फिराश नहीं है। ये अपने आका का फिराश नहीं। भाई आपने तो पढ़ा है कि बांदी फिराश है, अलबत्ता फिराश ज़ईफ है, और साहिब हिदाया क्या फरमा रहे हैं कि ये फिराश नहीं है। साहिब हिदाया के कहने का मतलब ये है कि ये फिराश तो है, लेकिन ऐसा फिराश नहीं है जो मोतबर भी हो। फिराश ज़ईफ है, हत्ता के बच्चा पैदा हो तो खुद ब खुद आका का शुमार भी नहीं होता जब तक वो दावा ना कर दे। तो मालूम है इसका फिराश होना भी किसकी तरह है? ला फिराश की तरह है। तो ये फिराश मोतबर नहीं है। तो कहते हैं लियान नहा लैसत भी फिराश इन लिमौलाहा, इसलिए क्योंकि अब बांदी जो है अपने आका का फिराश नहीं है। फइन नहा लौ जाअत भी वलदीन, देखो इल्लत भी जिक्र कर रहे हैं। ये देखो फा आई, फा याद रखो, आपने उसूल फिका की किताबों में पढ़ा है कि ये फा जो है कभी इल्लत बयान करने के लिए लाई जाती है फा, या और इससे कभी कभार इसे माकबल में इल्लत बयान की जाती है, कभी जो है इसे माकबल में इल्लत होगी और मां बाद में मालूल होगा, और कभी माकबल में मालूल होगा और मां बाद में इल्लत होगी। तो इसका तर्जमा क्योंकि के साथ करेंगे, क्योंकि कहते हैं अन्नहा लैसत बिफिराश इन लिमौलाहा, इसलिए क्योंकि ये अबांदी जो है ये अपने आका का फिराश नहीं है, यानी फिराश मोतबर नहीं है। फइन नहा लौ जाअत बिवलदिन, इसलिए क्योंकि अगर ये बांदी कोई बच्चा ले आई, यानी किसी बच्चे को इसने जन्म दिया, ला यसबुतु नसबहु मिन गैर दावतिन, तो उस बच्चे का नसब साबित नहीं होगा आका से, मिन गैर दावतिन, बगैर आका के दावे के, इल्ला अन्न अलैहि अन यस्तबरिअहा, मगर यह कि आका पर वाजिब है अयस्तबरी आहा कि इसका इस्तेबरा करवाए, सियानतन लिमाई ही, अपने पानी की हिफाजत के लिए, अपने पानी की हिफाजत के लिए इससे इस्तेबरा करवा ले। भाई देखिए, आका की बांदी है, आका उससे सोहबत करता है और अब वो उसका निकाह आगे करवाता है, तो अगरचे ये आका का फिराश है लेकिन इस फिराश का कोई एतबार ही नहीं, लिहाजा निकाह सही हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन आका को ऐसा करना नहीं चाहिए, आका पर वाजिब है कि बांदी का निकाह करवाना चाहता है तो पहले इस्तेबरा एक हैज करवा ले ताकि पता चल जाए कहीं ये इसी आका से हामिला तो नहीं है, तो निकाह से पहले एक हैज गुजार ले फिर उसका निकाह करवा दे। ये माना है इल्ला अन्ना अलैहि अन यस्तबरी अहा, मगर ये कि उस आका पर वाजिब है कि उस बांदी का इस्तेबरा करवा ले, सियानतन लिमाई ही, अपने पानी की हिफाजत के लिए। बात समझ में आ गई। हासिल क्या कि बैअ के मसले में खरीदार जो होगा उस पर इस्तेबरा लाजिम है, जो खरीदेगा बांदी को उस पर क्या लाजिम है? इस्तेबरा करवाए बांदी से, एक हैज गुजरने का इंतजार करे। और यहां पर आका अपनी बांदी का निकाह करवाना चाहता है और इसे ये वती भी करता रहता है, तो इस आका पर वाजिब है कि क्या करवाए? इस्तेबरा करवाए। बात समझ में आ गई। तो बाज उलमा ने लिखा कि आका पर यह इस्तेबरा वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, लेकिन साहिब हिदाया की इबारत से मालूम हो रहा है कि यह इस्तेबरा आका पर वाजिब है। साहिब हिदाया ने क्या फरमाया? अन्ना अलैहि अन यस्तबरी आहा, और अला किस लिए आता है? लुजूम के लिए और वजूब के लिए आता है। तो मालूम हुआ कि आका पर इस्तेबरा वाजिब है। भाई आगे देखिए, वईदा जाजा निकाहु फली जौजी अयता कबल इस्तिबराई इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह। भाई इस बांदी का निकाह तो जायज हो गया, आका इस्तिबरा करवाए या ना करवाए निकाह हो जाएगा, अगरचे आका पर लाजिम था कि क्या करवाए, इस्तिबरा करवाए, लेकिन अगर आका इस्तिबरा नहीं करवाता उसका निकाह करवा देता है, निकाह तो हो जाएगा। तो क्या अब वो जो आगे खावंद है उस पर इस्तिबरा वाजिब है कि इस्तिबरा वाजिब नहीं? कहते हैं नहीं, खावंद पर इस्तिबरा वाजिब नहीं, खावंद उससे फौरन वती कर सकता है। तो कहते हैं वह इदा जाजन निकाह, और जब यह निकाह जायज है, फली जौजी अयता आहा कबल इस्तिबराई, तो खावंद के लिए जायज है कि वह इससे सोहबत कर ले इस्तिबरा से पहले, इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक। وقال محمد رحمه الله لا احب له ان يطأها قبل ان يستبرئها। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ला उहिब्बू लहू, मैं इस खावंद के लिए पसंद नहीं करता, अय्यता आहा, कि वो इसे वती कर ले, कबल अय्यस्तबरी आहा, इसका इस्तेबरा करवाने से पहले, इसका इस्तेबरा करवाने से पहले खावंद इसके साथ सोहबत कर ले, ये मुझे पसंद नहीं है। और याद रखो, मुज्तहिद जब किसी मसले में कहे उहिब्बू हाजा, या वो कहे अकरहू हाजा, उहिब्बू हाजा मुझे यह पसंद है, या अकरहू हाजा यह मुझे नापसंद है, तो वो अपने पसंद या नापसंदीदगी को बयान नहीं कर रहा, बल्कि माना यह है वो फतवा दे रहा है कि अगर कहे ला उहिब्बू, मुझे पसंद नहीं है, मालूम हुआ यह जायज नहीं है इस मुज्तहिद के नजदीक। और जब वो कहे अकरहू, मुझे यह नापसंद है, तो उसका भी यही माना है, ये वो फतवा दे रहा है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह गोया फतवा दे रहे हैं, ला उहिब्बू लहू, कि मैं फतवा देता हूं कि खावन के लिए उससे सोहबत करना जायज नहीं है। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला उहिब्बू लहू अन यतअहा क़ब्ल अन यस्तबरिअहा, मैं पसंद नहीं करता कि खावंद उस अपनी मनकूहा बांदी के साथ सोहबत कर ले उससे इस्तिबरा करवाने से पहले, لأنه احتمل الشغل بماء المولى, इसलिए क्योंकि इस बांदी के अंदर इहतमाल है कि इसका रहम जो है मशगूल हो, बिमा इल मौला, आका के पानी के साथ, फवजबत तनज़्ज़ुहु, तो लिहाजा इससे बचना वाजिब है, यहां वती से बचना वाजिब है कि कहीं उसका रहम मशगूल ना हो आका के पानी के साथ। कमाफी शराई, जैसे खरीदने में होता है, यानी जैसे बांदी को खरीदने के अंदर खरीदार पर इस्तेबरा वाजिब होता है, यहां इस खावंद पर भी इस्तेबरा वाजिब है कि कहीं ये आका से हामिला ना हो। गई बात समझ में आ गई? आगे अब शेखैन रहमहुल्लाह का मजहब आएगा। वो क्या फरमाते थे? वो फरमाते हैं जब ये निकाह जायज है तो खावंद के लिए सोहबत भी जायज है, कोई इस्तेबरा वाजिब नहीं। कहते हैं वल्लहुमा, और शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील यह है कि अन्नल हुक्म भी जवाज इन निकाही अमारतुल फरागी, कि अन्नल हुक्म भी जवाज इन निकाही, कि ये जो निकाह के जायज होने का हुक्म लगाया गया, अमारतुल फरागी, अमारत कहते हैं अलामत और निशानी को, ये इसके रहम के फारग होने की निशानी है। भाई बिल इतफाक तीनों अइमा के नजदीक निकाह जायज है इस बांदी का जिसे आका सोहबत करता है बगैर इस्तिबरा के ही, आका क्या कर दे, निकाह करवाना चाहे तो निकाह हो जाएगा। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं निकाह हो जाएगा, लेकिन खावंद पर क्या वाजिब है, इस्तिबरा करवाए। शेखैन फरमाते हैं नहीं, कोई इस्तिबरा वाजिब नहीं। जब यह हुक्म लगा दिया गया कि इसका निकाह जायज है, तो यह अलामत है कि इसका रहम फारिग है, आका के पानी के साथ मशगूल नहीं है। अगर आका के पानी के साथ मशगूल होता तो शरीयत कभी भी इजाजत ना देती इसके निकाह की, लेकिन तीनों अइमा क्या फरमा रहे हैं, इसके आगे निकाह की इजाजत है। जब निकाह की इजाजत है तो निकाह की इजाजत होना यह अलामत है कि इसका रहम फारिग है, वो आका के पानी के साथ मशगूल नहीं। अगर आका के पानी के साथ मशगूल होता फिर तो निकाह की इजाजत ही ना होती, तो निकाह की इजाजत होना यह अलामत है किस चीज की, कि इसका रहम फारिग है। जब रहम फारिग है तो लिहाजा खावंद के लिए इसे सोहबत भी जायज है। تو کہتے ہیں ولہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الحکم بجواز نکاح کے جائز ہونے کا حکم لگانا امارت الفراغی یہ اس کے رحم کے فارغ ہونے کی علامت ہے فلا یؤمر بالاستبرائی لہذا اس خاوند کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا لست احبابا ولا وجوبا نہ تو یہ استحبابا حکم دیا جائے گا اور نہ وجوبا یعنی نہ تو اس کے لیے استحبابا استبراء ہوگا مستحب بھی نہیں اس کے لیے استبراء اور واجب بھی نہیں ہے بھائی بخلاف شرا امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا شرا پر کہ شرا کے اندر جیسے باندی کے اندر احتمال ہوتا ہے کہیں سابقہ آقا سے وہ حاملہ نہ ہو تو وہاں خریدار پر استبراء لازم ہوتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں یاد رکھو جب باندی کو خریدا جاتا ہے تو ہمارے تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ استبراء واجب ہے تو معلوم ہوا شیخین بھی اس میں کیا فرما رہے ہیں باندی میں استبراء واجب اور امام محمد بھی فرما رہے ہیں اور اسی باندی پر قیاس کر رہے ہیں اس باندی کو جس کا ابھی نکاح کروایا ہے آقا نے جیسے خریدی ہوئی باندی میں استبراء بالاتفاق واجب ہے اسی طرح اس باندی میں بھی امام محمد کیا فرماتے ہیں خاوند کو استبراء کروانا چاہیے بات سمجھ میں آ گئی لیکن شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو خریدی ہوئی باندی پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ نکاح اور شیرا میں فرق ہے نکاح جو ہے وہ رحم کے مشغول ہوتے ہوئے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی لیکن رحم کے مشغول ہوتے ہوئے باندی کی بیع کی اجازت ہوتی ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے خریدا جا سکتا ہے تو دونوں میں فرق آ گیا دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بھائی دیکھو نا ایک شخص کی باندی ہے تو وہ جب چاہے اس کو بیچ دے چاہے حاملہ ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی بیچ سکتا ہے بھائی تو لہذا نکاح کو آپ شرا پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ نکاح جو ہے وہ رحم کے مشغول ہونے کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا جبکہ شرا جو ہے وہ رحم کے مشغول ہونے کے باوجود بھی جائز ہوتی ہے ایک جیسی چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے جو دو الگ الگ قسم کی چیزیں ہوں ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دونوں جب مختلف چیزیں ہیں تو ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں بخلاف شرائی بخلاف خریدنے کے لئنہ یجوز مع الشغل اس لیے کیونکہ شرا تو جائز ہوتی ہے باوجود رحم کے مشغول ہونے کے آگے دیکھیے وَكَذَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا عِندَهُمَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اب یہ شخص اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے اب اس عورت سے وتی جائز ہے یا اس سے استبراء کروائے تو یاد رکھو بالاتفاق اس عورت کے ساتھ اس آدمی کا نکاح جائز ہے اور جب نکاح جائز ہے تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رحم کے فراغت کی علامت آ گئی نکاح تبھی جائز ہوتا ہے جب رحم کیا ہو فارغ جب علامت آ گئی لہذا اب اس خاوند کے لیے اس کے ساتھ فوراً ہی صحبت کرنا بھی جائز ہے استبراء واجب نہیں لیکن امام محمد یہاں بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ خاوند اس سے صحبت کر لے جب تک استبراء نہ کروا لے تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي اور اسی طرح جب دیکھا کسی شخص نے کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے فَتَزَوَّجَهَا پھر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا حَلَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا تو حلال ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ اس عورت سے صحبت کرے قبل ان یستبرئہا استبراء کروانے سے پہلے عندہما شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا احب له ان یطأها ما لم یستبرئها کہ میں پسند نہیں کرتا کہ یہ خاوند اس سے صحبت کرے ما لم یستبرئها جب تک اس سے استبراء نہ کروا لے والمعنى ما ذکرنا جی ترجمہ کیجئے والمعنى ما ذکرنا کا ترجمہ کیجئے ہاں اس کا معنی وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا طلبا عموماً یوں ہی ترجمہ کریں گے یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ کبھی تو معنی بیان کرنے کے لیے ہی آئے گئے یعنی کسی لفظ کا مفہوم بیان کرنے کے لیے اور کبھی معنی کا لفظ علت اور سبب بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے یعنی صاحب ہدایہ کبھی کبھار کسی لفظ کا مفہوم بیان کریں گے تو کہیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے اور کبھی کسی حکم کی علت بیان کریں گے تو تب بھی یوں کہیں گے اس کا معنی یہ ہے یعنی اس کے حکم کی علت یہ ہے तो माना का लफ्ज किस माना में इस्तेमाल होता है? इल्लत और सबब के माना में भी आम इस्तेमाल होता है कुतुब फिका में, यह आपने खुद ख्याल रखना है हमेशा। तो अब तर्जमा सुनो, वल माना मा ज़करना, और इल्लत जो है वो है जो हमने जिक्र कर दी। भाई ये औरत जो जिना करती है, ये औरत जिसने जिना किया और इस शख्स ने उसे निकाह कर लिया, तो शेखैन फरमाते हैं कि इस्तेबरा जरूरी नहीं। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं इस्तेबरा जरूरी है। कहते हैं वलमा नामाजा करना, और इल्लत वो है जो हमने पीछे जिक्र कर दी, जो पिछले मसले में इल्लत थी वही इल्लत यहां पर भी है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।